की कल्पना किए बिना, प्रतिनिधित्व किए बिना, उस धारणा को जीवन में धारण किए बिना रह ही नहीं सकता। ये खास बात है। अब उस नित्य आनंद और अनंत रस को परमात्मा की विभूति पढ़कर स्वीकार करो, चाहे स्वस्वरूप का प्राकट्य कहो, चाहे नित्य जीवन कहो, चाहे परम तत्व कहो, किसी भी भाषा में उसकी अभिव्यक्ति दीजिए, लेकिन वो है बड़ी जोरदार। और जब तक भीतर किसी भी प्रकार का अभाव को अनुभव करेंगे, तब तक वे चैन से रह नहीं सकते। अभाव का पूरा नाश कब होता है? तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मानव जीवन पूर्ण होता है तब होता है। पूर्णता कहाँ है? तो प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति में है, रस की अभिव्यक्ति में है। रस का स्रोत क्या है? तो अगाध प्रियता। और ये अगाध प्रियता कैसे उपयुक्त होती है उसके जीवन में? तो प्रेम स्वरूप परमात्मा से आत्मीय संबंध स्वीकार करने से होती है। तो अब हम सभी सागर भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने ईश्वर विश्वास के आधार पर साधन का निर्माण पसंद किया है, जीवन को पूर्ण करना पसंद किया है, परमात्मा को निभाना पसंद किया है, परमात्मा को पा करके स्वयं अपने सब प्रकार से चित्त करना पसंद किया है, उन लोगों के लिए ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं कि कैसे एक एक कदम हम अनुसरण में लेते जाएंगे और इस पंथ से हमारा जीवन पूर्ण होगा। तो स्वामी जी महाराज ने पांच महावाक्य बताए, जगह जगह पर उन्होंने इनका उल्लेख किया है और कहा है कि विश्वास पथ के साथ अर्थात प्रेम पंथ के साधक जो है उनको इन पांच महावाक्यों को धारण करना ही चाहिए। ये मौलिक बातें हैं। और किस नाम से पुकारोगे, किस रूप की आराधना करोगे, साकार मानोगे कि निराकार मानोगे, कि मंदिर में जाओगे कि मस्जिद में जाओगे, कि गिरजाघर में जाओगे कि गुरुद्वारे में जाओगे, जितने भी ये प्रतीक सब हम शरीरधारियों के लिए बनाए गए हैं, उनमें कौन सा आप पसंद करेंगे और कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, ये सारी बातें मौलिक पांच महावाक्यों के आधार पर आधारित है। अगर मूल में इन पांच बातों की स्वीकृति नहीं है तो किसी भी प्रकार से प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होगी और परमात्मा से अभिन्न होकर जीवन पूर्ण करने का जो अपना लक्ष्य है उसमें बहुत देर लग जाएगी। और अगर इन पांच बातों को हम लोग मान लेते हैं तो बाद की सारी साधनाएं सजीव हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। अब फिर सुनिए, साधना को सजीव बनाने के लिए पहली बात क्या है कि हम इस सत्य को स्वीकार करें कि हमारी और परमात्मा की जातीय एकता है। परमात्मा ने स्वयं ही अपनी ही धातु से हम लोगों को बनाया है, इसलिए हम उनकी जाति के हैं। इसमें किसी भाई बहन को कोई संदेह है क्या? जी, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है क्या जिससे हम लोग बनेंगे? उनके अतिरिक्त और किसी की स्वतंत्र सत्ता है क्या जो हमको बनाएगा? जी, तो इस सत्य को स्वीकार करने में हम लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। जी, तो पहले से अगर इस ढंग से नहीं विचार किया हो कभी तो आज से सही। ईश्वर जी हैं और हम लोग भाई बहन सुख दुख के द्वंद में फंसे हुए ईश्वर में विश्वास करने वाले साधक भी हैं, है कि नहीं है? ये अपने होने में कोई शक तो नहीं है? उनके होने में कभी कभी बल और गुण का अभिमान आदमी को भ्रम में डाल देता है। उनकी बड़ी कृपा है कि हमारे सामने ऐसा कोई जाल नहीं है, लेकिन अपने होने में किसी को शक नहीं है। मैं दुखी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं हूँ, ये तो सब किसी को इसी वर्तमान क्षण में अपने द्वारा भाषित हो ही रहा है जी। अपने को विकास कर नहीं सकते, अच्छी बात। तो अब यह मैंपन जिसका होनापन हम लोग हर परिस्थिति में अनुभव करते हैं, शरीरों के नाश के बाद भी यह रहता है। तो इस मैंपन का अस्तित्व जो है वो जिसमें से निकला उसकी सत्ता को भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। जैसे ये एक मशीन है, वो किसी फैक्ट्री में ये बनाई गई, तो अगर इस मशीन को हम लोग मानते हैं कि ये बनी हुई चीज है, तो जहां ये बनी उसको भी मानना ही पड़ेगा, जिस धातु से बनी उसको भी मानना ही पड़ेगा कि किस धातु से ये बनी है, वो धातु भी है, और कहां बनी है तो फैक्ट्री भी है, किसने बनाई है तो कंपनी भी है। तो उसी तरह से आप सोचिए कि हम सभी भाई बहनों को जब अपने में मैंपन का भास होता है कि मैं हूं, तो यह शरीरों से निरपेक्ष है। ये भाव शरीर रहे तब भी और ना रहे तब भी मैंपन का भास समाप्त नहीं होता है। तो ऐसा जो हम लोग एक अपने अस्तित्व को अनुभव करते हैं, तो यह अस्तित्व जिस परम सत्ता में से निकला है उसको मानना पड़ेगा कि नहीं? अपने को अपने हम लोगों ने बना ही नहीं दिया, तो जहां से भी ये निकला है उस सत्ता को ही स्वीकार करना पड़ेगा, जरूर मानना ही होगा। तो ये पहली बात है, ये पहला शर्त है हम लोगों के लिए कि हम उस सत्ता को स्वीकार करें और इस सत्य को अपने द्वारा माने कि मैं उन्हीं की धातु का बना हुआ हूँ, उन्हीं की जाति का हूँ। ठीक है, तो कितना गौरव होना चाहिए अपने लोगों को, संसार से कितना आपका मूल्य बढ़ जाएगा केवल इस बात को सजीवता देते ही कि अरे हम तो परमात्मा की जात के हैं, हम तो उनकी जात के हैं, हम तो उनकी धातु से बने हैं। तो आपके लिए परमात्मा के साथ जो आपका ये जातीय संबंध है, इससे बढ़कर गौरव प्रदान करने वाला संबंध संसार में कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। अब विचार करके देखो, अब विचार करके देखो कि हम लोग अपना गौरव परमात्मा की जाति के होने के आधार पर मानते हैं कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने का एक कॉन्शियसनेस रखते हैं। अब कोई ब्राह्मण दुखी ना हो भाई, मैं केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, यूं ही एक उदाहरण आ गया कि जरा जिसको श्रेष्ठ वर्ग मानते हैं शरीर के हिसाब से उसमें जन्म हुआ, तो उसका महत्व अपने सामने ज्यादा आता है कि हम परमात्मा की जात के हैं इसका गौरव ज्यादा आता है? ये होना चाहिए, ये सच्ची बात है।
तो देखो आज से शरीर के नाते से कोई भी बड़ी बात तुमको दुनिया में मिले तो उसके आधार पर अपना मूल्यांकन कभी मत करना। एक बेपढ़ी लिखी माता जी लेकिन सत्संग के प्रकाश में उनको शरीरों से असंगता सिद्ध हो गई थी। महाराज जी ने उनका नाम रख दिया था शुद्ध बोध। तो शुद्ध बोध माता जी वो थी, केवल नाम ही नहीं था, उनको अशरीरी जीवन का सब समय स्वाधीनता और आनंद का अनुभव होता रहता था। बिल्कुल वे पढ़ी लिखी थी और सांसारिक दृष्टि से बहुत ही दुखमय जीवन था। तो उनके पास दो चार साधक लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी, तो भिक्षा आए और सब लोग बांट करके खाए। जब होने लगा तो कोई कोई साधक उसमें थे तो कहने लगे कि भाई हम लोग तो इस तरह से नहीं ले सकते। माता जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, तो कहने लगे अपने तो ब्राह्मण है। तो माता जी ने कहा कि ठीक है भैया, आप कह सकते हैं अपने तो ब्राह्मण है, भाई मैं तो कह सकती हूँ कि हम तो ब्रह्म की जाते हैं। तो कौन सा ज्यादा ठीक रहा? तो देखो ये बातें केवल कहने की नहीं, केवल सुनने की नहीं, और समझने का एक बड़ा सुख होता है और दूसरों को समझाने का उससे भी बड़ा सुख होता है, इसकी सीमा में नहीं रखना चाहिए। आज ईश्वर विश्वास की दृष्टि से अपने ही में नित्य विद्यमान उस नित्य संबंधी के अनुभव से हम लोग वंचित हैं, तो इस दशा को मिटाने के लिए अभी से इस सत्य को इतनी सजीवता से मानिए कि आप अपना मूल्यांकन कभी संसार के संबंध से मत करना। और शरीर तो संसार की जात का है ही है, शरीर का उससे अधिक कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, इसलिए शरीर का अभिमानी अपने को नहीं रहना है, शरीर के साथ मिलाकर अपने को नहीं रहना है, शरीर की जात पात गोत्र दशा से अपने को नहीं जुटाना है, इसको इसकी जात के साथ निभने को और अपने को अपने सजातियों के साथ रखो। ठीक है जी, एक बात है। अब दूसरी बात देखो, सजातीयता तो है उन्हीं से और किसी से है ही नहीं, हो नहीं सकता। अगली बात महाराज जी कह रहे हैं कि दूसरा महावाक्य और सत्य के रूप में ये स्वीकार करो कि केवल उन्हीं से हमारा आत्मीय संबंध है अपना। एक तो सजातीयता हो गई, दूसरा आत्मीयता, हमारी जाति है ये भी ठीक है और हमारे अपने हैं सगे जिसको हम लोग कहते हैं, तो अपने से भी अपने अधिक आत्मीय प्रिय चिंतक रक्षक अधिक से अधिक यही है, तो उनसे आत्मीय संबंध स्वीकार करना यह भक्त होने की मौलिक बात है। परमात्मा है ऐसा जिसने स्वीकार किया वो आस्तिक हो गया, आस्तिकता वहां तक आ गई, लेकिन उससे मेरा अपना आत्मीय संबंध है यह भक्ति के प्रारंभ के लिए आधार है। जिन दिन साधकों ने उच्च वर्ण में जन्मे हुए, निम्न वर्ण में जन्मे हुए, बड़े संपन्न परिवार में जन्मे हुए, बड़े ही विपन्न परिवार में जन्मे हुए, बहुत ही ही पढ़े लिखे और कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, सब प्रकार के उदाहरण भक्तों के संसार में उपस्थित हैं और सभी के संबंध में यह एक तत्व निर्विवाद रूप से पाया जाता है कि उन भक्तों ने सहज भाव से परमात्मा को अपना आत्मीय कहकर स्वीकार किया था। नीरज जी ने पति कहकर स्वीकार किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वामी कहकर स्वीकार किया, मैया यशोदा ने लाला कहकर स्वीकार किया, संत ईसा ने बाप कहकर स्वीकार किया, पैगंबर मोहम्मद ने दोस्त कहकर स्वीकार किया। सुना है ये सभी ईश्वरवादी हैं, ये सभी प्रभु के भक्त हुए जिन्होंने उस अनंत परमात्मा को अपना आत्मीय कहकर स्वीकार किया और उसी आत्मीय संबंध के अनुसार परमात्मा को रस देने में ये भक्त समर्थ हो गए। अभी अपनी दशा क्या है? अभी तो मुंह खोले बैठे हैं रस पाने के लिए, सारा इंतजाम करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, क्या बात है भाई। तो ऐसा करेंगे तो जीवन में रस की अभिव्यक्ति होगी, होगी ये बड़ी बात है और हम सभी भाई बहनों के लिए ये पहला कदम है। अरे भाई जब इधर भरेगा तब न देंगे, खाई नहीं है तो देंगे क्या, तो पहले भरना ही जरूरी है। और वो भरता है कैसे? तो उस विश्वंभर के साथ आत्मीय संबंध को स्वीकार करने से भरता है। आप लोगों ने आज पहली बार सुना है कि पहले भी सुना था? मनुष्य की इतनी बहादुरी है कि वह बिल्कुल निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर और बड़े अधिकार के साथ परमात्मा को अपना सगा संबंधी बना लेता है। यहां एक साधक आए थे, कई बार उनसे मेरा मिलना जुलना हुआ था, अच्छे साधक हैं, अच्छी उनकी निष्ठा है। तो जाने लगे एक बार बीच में से, तो मैंने कहा कि भाई जी आप क्यों जा रहे हैं? तो कहने लगे कि पोती की शादी है और वो लड़की कहती है कि बाबा जी नहीं आएंगे तो मैं बेदी पर बैठूंगी। अच्छी बात है भाई। तो बहन जी क्या करूं, मुझे जाना है। तो मैंने उनको याद दिलाया, हमने कहा नरसिंह मेहता के यहां समझी के घर से चिट्ठी आई थी, वो चिट्ठी ले गए ठाकुर जी के मंदिर में और बहुत ही डिटैच्ड, बिल्कुल ही अनासक्त अपना उस उनकी तो देवती की शादी थी, लड़की की लड़की, तो अपना कोई उनको संबंध नहीं मालूम होता था। तो नाचते नाचते गाते गाते चिट्ठी लेकर गए और मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में पत्र रखा और ठाकुर तेरे समधी की चिट्ठी आई है, ठाकुर तेरे समधी की चिट्ठी आई है, तेरे समधी की चिट्ठी आई है, हमको क्या करना है, तेरा समधी तू समी तू जाए, अपने को कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने उन सज्जन को याद दिलाया, हमने कहा कि भाई जी एक बार प्रयोग तो करिए, बढ़िया मौका है आपके सामने। तो कहने लगे बहन जी बात तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने कहा कि आप जाइए यहां से, अकेले में बैठिए, थोड़ी देर सोच करके देखिए और अगर ये बात सत्य है कि आपकी पोती की शादी है तब तो जरूर चले जाना चाहिए। अगर ये बात सत्य है कि ठाकुर की पोती की शादी है तो जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज ने 2 मिनट में इन 5 वाक्यों को सुना दिया। फिर मैं याद याद दिला दूं, हम लोगों की परमात्मा से जातीय एकता है, हम लोगों की परमात्मा से आत्मीय एकता है, अर्थात हम सब उनके आत्मीय हैं, हमारे वे ही आत्मीय संबंधी हैं, नित्य संबंधी हैं, अपने हैं। तीसरी बात, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। चौथी बात, सब कुछ उनका है। और पांचवी क्या? मैं उनका, तो आत्मीय संबंध हो ही गया उनका,
जातीय संबंध, नित्य संबंध, आत्मीय संबंध,
ठीक है। जातीय संबंध है उनसे, नित्य संबंध है उनसे, आत्मीय संबंध है उनसे, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ उनका है। तो स्वामी जी ने दो मिनट में सुना दिया। अब अपने लोग इन बातों को अपने सामने रखकर देखें कि इनका अनुसरण करने में, सच्चाई से इन बातों को मान लेने में हम लोगों का कितना समय गया, आज क्या दशा है, कितना हम मान पाए और कितना और बाकी है जिसको आज मान करके ही छोड़ें। अपना अपना दिल चटोल कर देखो भाई, साधकों की सूची में नाम लिखा गया, अब पांच वाक्यों की व्याख्या करने को बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही सरल बात है मनुष्य के जीवन की। और सचमुच आप अगर इस सत्य में आस्था रखते हैं कि सचमुच ऐसा होता है और सचमुच ऐसा संभव है और सचमुच मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं क्या बताऊँ, संत की कृपा और भगवत कृपा के भरोसे मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ आपको कह सकती हूँ कि एक एक कदम किसी भी तरह से आप अपने को मना लीजिए तो केवल स्वीकृति मात्र की बात है। उसके प्रभाव से जीवन में कितने रस की अभिव्यक्ति होती है आप अंदाज नहीं लगा सकते। और पुराने पुराने विकार जिनसे संघर्ष कर करके आप थक गए हैं, उस रस स्वरूप की आत्मीयता की स्वीकृति मात्र से शुष्क जीवन में रस की अभिव्यक्ति जब होने लगती है, तो जिन विकारों से संघर्ष करके आप थक गए थे उन विकारों का पता ही नहीं चलता। बहुत बहुत दिन शांति और आनंद में निकल जाता है। काफी काफी दिनों के बाद याद आता है कि अरे जिन विकारों को मिटाने के लिए हम इतने परेशान थे और तो बहुत दिन से उनका दर्शन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस पवित्र प्रेम के रस का एक बूंद आपके हृदय को सरल बनाने में समर्थ है, सरस बनाने में समर्थ है। और रस का भूखा हाय वो बेचारा गरीब आदमी, रस का भूखा कहां कहां मारा करता है, जगत की धूम खांस कर फिरता है। रस का प्यासा मन बेचारा पागल होकर करता है, भटकता फिरता है, उसकी चंचल गति मती का कहीं और छोर नहीं लगता। तो साधक लोग बैठे बैठे मन को गाली देते रहते हैं, क्या करें, हम तो चाहते हैं कि परमात्मा के पास रहें और ये मन ऐसा खराब है कि इधर उधर बदल रहा है। अरे वो बेचारा खराब है, उसका बस चले तो वो ही ऊपर मुकदमा चलाए। मैं तो परमात्मा के यहां से बिल्कुल शुद्ध आया था, तुमने अपने सुख व्यवस्था में मेरी दुर्दशा की और आप मुझको दोषी बनाते हो। तो बड़ा गहन प्रश्न है मानव जीवन का और बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर साधना के बिल्कुल दैनिक जीवन में साधकों की काम आने वाली बात है जो महाराज हम लोगों के सामने पांच वाक्यों में कह रहे हैं। अब मैं अपनी कथा सुना दूं जरा सा, आपको बहुत रुचिकर तो लगेगा ही और उसके साथ अपने आगे बढ़ने में मदद भी मिल सकती है। मैंने महाराज जी को कहा था कि दुनिया में अपना करने के लायक कोई दिखता नहीं है और बिना किसी को अपना बनाए जीवन सूना सूना लगता है, तो हमारी समस्या का समाधान करिए। तो उन्होंने कहा कि एक है बड़ा बढ़िया, बहुत प्रेमी स्वभाव का है और उसमें किसी प्रकार की कमी है, भगवान का नाम नहीं लिया क्योंकि भगवान का तो पूरा बिगड़ जाता है। तो कहा एक है मेरा मित्र है एक ही और बहुत ही प्रेमी स्वभाव का है और उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और उसको जो लोग अपना बना लेते हैं तो बदले में वो प्रेम भाव के अतिरिक्त आदमी से कुछ नहीं चाहता। तो अगर तुम स्वीकार करो तो मैं सगाई की बात करूं। चर्चा होती रही मैं सुनती रही तो मुझे मालूम तो हो ही गया कि किसकी ओर संकेत है महाराज जी का। तो मैंने कहा कि स्वामी जी मुझे एक बड़ी भारी दुविधा है, आपका सामना तो मैंने मान लेती लेकिन एक शंका है मेरी जिस कारण से अभी तक मैं अलग से बैठ करके सुन रही हूं बातें मान नहीं गई। शंका ये है कि मैं अपनी ओर देखती हूं तो बहुत ही दयनीय दशा दिखाई देती है, कितना तो भय है दुनिया में, कितनी तो चिंताएं हैं, कितने अभाव हैं, कितने लालच हैं, कितना राग द्वेष है, किसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये बड़े बड़े आदमी हैं, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। तो ऐसी जो मेरी दशा है हर प्रकार से मालूम होता है जैसे कांटे चुभ रहे हैं जीवन में। तो मेरे जैसे का साहस कैसे होगा कि आप जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं उससे मैं सदा संबंधी होने का प्रस्ताव रखूं। ये मैंने बात बनाने के लिए नहीं कहा, संत के साथ बहस करने के लिए नहीं कहा, सचमुच में वो दशा मेरी थी। सुना मैंने बड़ा प्रेमी स्वभाव से एक बार उनको अपना कर देता है उसके सारे दोषों गुणगुणों को विचार करके वे अपने प्रेम के लायक बना देते हैं। बड़ी बड़ी महिमा उनकी स्वामी महाराज उनको सुनाते रहे, मैं सुनती रही तो लालच तो लगा जरूर कि अगर ऐसा कहीं है तो उसका सहारा है तो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन किसी भी प्रकार से मैं सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, अपने को आत्मीय करने के लायक नहीं समझती थी। कैसे कहें और मुझसे कहें ऐसा भी कभी हो सकता है जो परम सुंदर है, जो सारे विश्व को सुंदरता प्रदान करता है, उससे मैं इतनी गंदी, इतने दुर्गुणों से भरी भैया यशोदा ने कहा मेरा ताला, नीरज ने कहा माई मैंने गोविंद और इतना कंफिडेंस आ गया उनको, इतना दीपक के निकट होने का, प्रियतम के निकट होने का इतना प्रत्यक्ष हो गया उनके सामने कि वो दुनिया को सुनाकर करने लगी माई मैंने गोविंद और मैंने उनको वो खरीद दिया। तो कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, आपसे प्रीति की तो उनके पास उतनी प्रीति थी और उन्होंने उस प्रीति सगाई को बल पर उस प्रेम स्वरूप को अपना बना लिया और ये प्रेम से धनी अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, अपनी महिमा मानते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो महाराज जी ने कहा ऐसे भावपूर्ण भक्त पूरे संसार में जिन्होंने खुले दिल से डंगे की चोट दुनिया को सुना के कह दिया मेरा लाली तुम्हारा ग्राहक नहीं होता है तो कोई चिंता की बात नहीं, तुम अपनी असमर्थता, अपनी वेदना, अपना दुख सब सहित अपने को उनके समर्पित कर दो और कह दो कि हे प्यारे मैं देवती भी हूँ, मैं तेरी हूँ, ऐसा कर दो। तो सामर्थ्यवानों ने कह दिया था हे प्रभु तू मेरा, असमर्थों ने कह दिया था हे प्रभु मैं तेरा। ठीक है, मैं अहंकार अभिमान पालने वाली करीब महीनों का समय लग गया यह सोचने में कि इतनी गंदगी लेकर कैसे जाऊं, अच्छा हो पहले सफाई हो जाए, पहले दोष मिल जाए, पहले लोग मिल जाए, तो साफ होकर स्वच्छ होकर अच्छी बनकर जाऊं, तो कहूं कि ये प्रभु मैं तेरी। ठीक है, कुछ समय लगाया, कुछ बल लगाया, सफाई करूं, हुआ तो मैंने कहा महाराज जी से, महाराज जी मैं दोनों में से कुछ नहीं कर सकता, ये करने का साहस नहीं है कि ये प्रभु तू मेरा, और ये करने का साहस भी नहीं है कि मैंने ज्यादा से जल्दी तुम देखो पड़ो, समय लगाना पड़ा, मैं नहीं जानती हूँ सफाई को मुझसे कुछ हो नहीं पाई, लेकिन संत की कृपा होगी, भगवत कृपा होगी, चाहे वैसे भी हो मुंह खोल करके भले मैंने कहा नहीं हो, लेकिन भीतर भीतर अपनी दुर्गति की पीड़ा मुझे सताती रही, प्रतिक्रिया में उस दुखहारी की ओर से सहारा मुझे मिलता रहा, कैसे अहम की धारणा में परिवर्तन हुआ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन हो गया। आज आप भाई बहनों के रूप में उन्हीं की महिमा उनको सुनाने में आनंद आ रहा है। अब अपने सामने रख लो ये बात, इससे अधिक दुर्गति तो आप भाई बहनों की है नहीं, सहज भाव से स्नेही हृदय लेकर आप परिवार के साथ रहती हैं, समाज के साथ रहती हैं, स्नेह कितने हृदय आता है। अब आगे बढ़ाने की बात है तो बढ़ाने में चाहे जिधर से अच्छा लगे उधर बीच में इस स्वीकृति को सजीव कि यह सत्य आपके जीवन में सजीव ना हो जाए और जब मान करके नींद रखता नहीं मिल जाए, कोई कारण नहीं। मनुष्य ने हवा को उतना संभव माना, उड़ने लगे। मनुष्य ने जब के ऊपर पुल बांधना संभव माना और बांधने लगे। मनुष्य ने चंद्रलोक की यात्रा को संभव माना और कर दिया। इन बातों में मनुष्य को बड़ा आत्मविश्वास है। तो जिसका अंत मृत्यु का भय है उसको साथ में आपका बड़ा उत्साह है, और जिसका अंत अनंत जीवन है, कभी न मिटने वाला अनंत है, कभी न घटने वाला प्रेम का रस है, उसके लिए और कितने दिन सोचोगे भाई। दो ही सूत्र आज हुए, अब इस पर आज थोड़ा मनन करिए और अपने को समझाइए, किसी भी प्रकार से अपने को मना लेना है। आपको मैं क्या सुनाऊं, आपको सुनाने में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, भाई बहन आनंदित हो रहे हैं, ईश्वर विश्वासियों के लिए बहुत उपयोगी चर्चा हो रही है। तो आपको सुनाना तो मेरे लिए सहज है, आपको समझाने के लिए तो बहुत बार हूं मैं, लेकिन इसके बाद इसके पहले संतरी मानी सुन करके अपने को कसौटी पर रखकर मैंने देखा है। आप कई बहनों से निवेदन कर रही हूँ कि अपने अपने को कसौटी पर रखकर देखने का समय अपने को दो। एक चक्कर सुन लिया, दूसरी चक्कर सुनी, फिर तीसरी चक्कर सुनी, तो परिणाम क्या है? वैज्ञानिक परिणाम ये है कि ऊपर से भरते जाओ और नीचे से निकलता जाता है। खूब अध्ययन किया है मैंने इस विषय पर और खूब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया है इस संबंध में। एक बार दूसरा किया, दूसरे पर चिंता, दूसरे पर सोचा, करते जाओ करते जाओ, ऊपर तरह भरते जाओ नीचे नीचे निकलता जाएगा। ठहरने के लिए उसको कोई मौका ही नहीं दिया जाए, वैसे ठहरे और फिर आप कहते हैं कि इतना सुना लेकिन ठहरा नहीं। तो इंतजाम तो आपके लिए यही दिया था कि न ठहरे। सोचता है आखिर ये भी मशीनी है कि और क्या? टेब पर आप वचन भर लेते हैं और थोड़ी देर के बाद दूसरी कुर्सी पर दूसरा भरो तो दोनों सुनने में आएगा? दोहरा के भरोगे तो क्या होगा? दूसरा सुनाई देगा, पहला खत्म, उसी पर तीसरा भर लो तो तीसरा सुनाई देगा, पहला दूसरा खत्म। ऐसे ही है, ये भी तो मशीन ही तो है, प्रकृति की बनाई हुई है, भौतिक तत्वों की रची हुई है। जो काम यंत्र से होता है वो काम शरीर से होता है। अब भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ किसी का कम चलता जाए, काम का एक है। इसलिए मैं बहुत जरूरी बात आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूं कि सबूत आप सीरियस है इस मामले में कि भाई ईश्वर विश्वास का पंथ मैंने पकड़ा है कि शरीर के नाश होने से पहले मुझको बड़े ईश्वर मिल ही जाना चाहिए और जन्म जन्मांतर के सारे समस्याओं का समाधान हो ही जाना चाहिए। ऐसा अगर आपका निश्चय है तो वैज्ञानिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर, भावात्मक स्तर पर ठीक प्रयोग करिए जीवन का, बहुत अच्छा फल आपको दिखाई देगा। और मेरा विश्वास इसलिए बढ़ गया कि मैंने अपने को हारते हुए पाया और संत और भगवंत ने अपनी करुणा कृपा से मेरे रास्ते की बाधाओं को मिटाया, तो मुझे बहुत बहुत दृढ़ता के साथ से उनके मंगल में दुकान में आशा जम गई कि ठीक है जितना तुम्हें करना है तुम करो और जहां तुम्हारा ठीक चलेगा तो खुद ही कर देंगे। तो हर कदम पर वे मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारे भीतर ही विद्यमान है, उन्हें देर भी नहीं लगती और हमारी सरकार अच्छी स्वभाव होना और भी अच्छा होगा। हकीकत स्वभाव होने का क्या मतलब है कि खूब प्रयास कर रही हूँ अपने को गंदगी से ऊपर उठाने के लिए और प्रयास करने में मुझको सफलता नहीं मिलती है विकारों के नाश में, तो मैं पुकारती कभी नहीं थी कि अब मेरा वश नहीं चल रहा है तो तुम कृपा करो, कभी भी पुकारती नहीं थी। लेकिन जब मैं खटपटाती थी तो वे खुद अपने आप से ही मदद कर देते थे और जब मेरा जी हल्का हो जाता था तो ध्यान नहीं आता था कि अच्छा मेरे जी को हो नहीं रहा कैसे हो गया, तब मैं प्रणाम करती सबकी कृतज्ञता प्रकट करती कि अच्छा आप इतने नजदीक रहते हैं मेरी बड़ी भूल हो गई, मैंने आपकी इस उपस्थिति और इस करुणापूर्ण व्यवहार को पहले से स्वीकार नहीं किया, अगर स्वीकार कर लिया होगा तो इतनी परेशानी मुझे नहीं होती। तो बाद में ध्यान नहीं आता काम जब कर चुके मेरे को उबार देते, जब हल्कापन आ जाता जब निश्चिंता आ जाती जब भीतर में उनकी विभूतियों के प्राकट्य के आनंद भर जाता तो मैं सोचती थी कहां से आया, हम तो कर रहे थे तो हो ही नहीं रहा था। तो बाद में ध्यान दिया था कि स्वामी जी ने कहा था जहां साधक हारता है करुणा में ही करुणा का दरवाजा खुलता है। तो अच्छा मैंने नहीं पुकारा तब भी आपने करुणा बरसा दिया तब आप अच्छे बढ़िया ठीक है।